ओम शांति। ठीक 10:75 का पहला क्लास रिकॉर्ड चला है। जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने एक साधारण पुराने पन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं मुझे पुराने पन में, पुरानी राजधानी में आना पड़ा। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं पुराने पन में आना पड़ा। और राजधानी कौन सी? पुरानी राजधानी। द्वापरयुग में रोज जो राजधानियां तैयार होती हैं उनमें नहीं, तो कोई लंदन में आया या कोई न्यूयॉर्क में आया, कौन सी राजधानी में आया है? पुरानी राजधानी कौन सी है? पुरानी राजधानी कौन सी है? कैपिटल दिल्ली। कौन आया? बाप। कब आया? 76 में बाप पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी ये रावण की राजधानी है। बाप का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। राजधानी किसकी है? रावण की। रावण देखा है, तन भी पराया है। तन में आता हूँ, वो तन भी मेरा अपना नहीं है, पराया है। क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। जो शरीर को कंट्रोल कर रही है, कौन सी आत्मा कंट्रोल कर रही है? कौन? हाँ, प्रजापिता की आत्मा जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है। और अभी कैसी बन गई? पतितम प्रधान। वो शरीर की कंट्रोलर है पहले से ही। मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं है। क्या है जो बदलता नहीं है? हमारा नाम है काम के आधार पर, शिव मन कल्याणकारी। मैं जो भी काम करता हूँ वो कल्याणकारी काम करता हूँ। कल्याण के आधार पर नाम पड़ा है शिव। वो शिव नाम कभी नहीं बदलता। क्यों? और आत्माओं के तो काम बदल जाते हैं, कल्याणकारी से क्या हो जाते हैं, अकल्याणकारी भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा काम चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों से क्यों न करूं, लेकिन कोई भी हालत में मेरा काम अकल्याणकारी नहीं हो सकता। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं, नवयुग आया अर्थात नई दुनिया, नया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? तो सोई हुई है क्या? अब ज्ञान निद्रा में सोई हुई है, न पता नहीं चल रहा है कौन आया हुआ है। क्योंकि आत्मा घोर अंधियारे में सोई पड़ी है, कुछ भी समझ नहीं है। बाप को नहीं जानते। अब बाप जगाने आए। अभी तुम देह के बाप को जानते हो, तुमसे बेहद का सुख मिलना है नई युग में। क्या ऐसे नहीं गलत फहमी हो जाए? तुमसे बेहद का सुख कोई यहाँ लेना शुरू कर दो, यहाँ बेहद का सुख नहीं मिलना है। कहाँ मिलना है बेहद का? आप इंद्रिय सुख कब मिलना है? किस समय तो दिन है? अंत समय का वर्णन है। सत्युग को नया युग कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। तो विद्वान पंडित से पूछो, नया युग फिर पुराना कैसे होता है, कोई भी बतलाए नहीं करेंगे। कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है, अब तुम बच्चे जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए, अर्थात स्वर्गवासी से नर्गवासी कैसे बने। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, वो मनुष्य नहीं जानते, तुम तो बताओ स्वर्गवासी में नरकवासी कैसे बने, कैसे का जवाब क्या हुआ है? अनेकों के संग के रंग से नरकवासी वैश्याले के वासी बने और एक के संग के रंग से स्वर्गवासी बनते। मनुष्य बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब जगदम्बा कहते हैं, अम्बा तो एक होती है ना, सारे जगत की अम्बा एक ही होगी ना, जगत अम्बा का कनेक्शन जगत पिता से, सारे जगत का पिता सारे जगत का बीज तो एक ही होगा ना, तो जगदम्बा जी एक ही होगा। अम्बा वास्तव में माता को बाहर लाता है, एक माता की बात नहीं है, नंबरवार माताएं हैं। कुछ जो सहयोगी बनती हैं वो भी क्या बन जाती हैं, जगदम्बा की भुजाएं बन जाती हैं, परंतु पूजा तो एक ही होनी चाहिए। क्यों? सभी माताएं सहयोगी हैं तो सबकी पूजा होनी चाहिए, एक ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भुजाएं तो फिर भी जड़ होती है, भुजाएं तो चलाने वाला चैतन्य आत्मा होती है, तो आत्मा एक और उसको चलाने वाली भुजाएं, आत्मा के आधार पर चलने वाली भुजाएं अनेक। तो बाबा का भी एक ही यादगार है, अब बेबीचारी यादगार है, अम्बा भी एक ही है, अनेक मंदिर बनाए अनेक रहने से बेबीचारी बन जाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं उनको जानते कुछ भी नहीं, जगदम्बा को भी नहीं जानते। ये है जगदम्बा और वो है जगत की महारानी लक्ष्मी, यह नजदीक कर दिया और वह दूर कर दिया। क्यों? यह हमारा संग निगम है और रुद्रमाला पहले तैयार होती है, तो ज्यादा नजदीक कौन हुआ करके रुद्रमाला, रुद्रमाला के दो मण के प्रमुख जगदम्बा और जगत पिता। तो ये है जगदम्बा और वो लक्ष्मी है जगत की महारानी। कौन सी युग में हुई? सतयुग में। तुमको पता है जगदम्बा कौन है और जगत की महारानी कौन है? कुछ बुद्धि मनुष्य नहीं जानते, तुमको तुमको तो पता है। ये बातें तब कोई जान नहीं सकते जब तक बात आकर के इशारा न देगी। लक्ष्मी को देवता कहेंगे और जगदम्बा को क्या कहा जाएगा? ब्राह्मणी। उनका कौन हुआ? अगर ब्राह्मणी है, एक के साथ उसका कनेक्शन है, तो जगदम्बा है सबसे बड़ी नदी। क्या नाम है उस नदी का? नाम है ब्रह्मपुत्र। बहुत ऊंची ऊंची स्टेज में बहती रहती है, पहाड़ों पर ही बहती है। गंगा यमुना आदि नदियां पहाड़ से नीचे उतर के मैदान में बहती नीचे से, लेकिन ब्रह्मपुत्र ऊंची ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर ही बहती बहती सागर पता ब्राह्मण तो संग में वो परी होती है, तो ऊंची युग कौन सा है? संगम युग। और पुरुषोत्तम संगम युग कहाँ होता है? कौन से देश में होता है? भारत में, सारे भारत में, सारे भारत में पुरुषोत्तम संगम युग होता है क्या? मुरली लता ये मधुबन में है पुरुषोत्तम संगम युग, सब कंटक सब पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे तो पुरुषोत्तम संगम युग का प्रभाव सबसे जाति किसके ऊपर पड़ेगा? जिनकी बुद्धि मधुवन में रखी रहेगी, जो बुद्धि से मधुवन वासी होंगे उनके ऊपर उसका प्रभाव भी सबसे जाति पड़ेगा। संकरण किसका लगेगा? एक बात का, तो जगदम्बा ब्राह्मणी है संगम युग पर, ये पुरुषोत्तम संगम भी ब्राह्मण होते हैं, उस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम शक्ति रखी जाती है, तो ब्रह्मा द्वारा नहीं, किस द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा तो सही छोड़ देते हैं, सृष्टि नहीं, नहीं नई सृष्टि नहीं होती, नई दुनिया बनती है नए ज्ञान से। पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आवेंगे, बनेंगे तो यहाँ और देखने में कहाँ आएंगे? वहाँ। इस समय तुम ब्राह्मण गायन के लायक हो, क्यों पूजन लायक क्यों नहीं? क्योंकि ये शरीर अपवित्र है, इसलिए तुम गायन के योग्य हो, पूजन योग्य नहीं हो। अभी सेवा कर रहे हो भारत की, तो तुम पूजा के लायक बनेंगे? ब्रह्मा को इतनी भुजाएं देते हैं तो अम्बा को क्यों नहीं देंगे? मम्मा का भी तो, मम्मा को भी तो बहुत भुजाएं हैं ना, वो भी तो प्रजापिता हुई ना, क्यों? पिता मन बीज, और रुद्रमाला के जितने मणके हैं वो सब क्या है? बीज है। जैसे कोई एक बीज होता है उसमें दो दल होते हैं, होते हैं कि नहीं? जैसे चने का बीज, मटर का बीज, तो उसमें दो दल होते हैं और दोनों दल का मेल हुआ होता है से होता है। तो ऐसे ही परमात्मा शिव का प्रवेश दोनों में होता है, कौन दोनों में? जगत पिता और जगदम्बा। तो वो भी तो प्रजापिता हुई ना, माना सारी प्रजा सब बीज हुई ना, बच्चों को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, बच्चों को क्या कहेंगे? प्रजा कहेंगे। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में कब जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे? बाबा सतयुग में तो आबादी कितनी होगी? बहुत थोड़ी होगी, सारा जगत होगा वहाँ मौजूद? नहीं होगा, इसलिए उनको वहाँ जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है, कहाँ बाला है? प्रजापिता का नाम बाला है शास्त्रों, कौन से नाम रूप से? प्रजापति के रूप से। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी है उनके बच्चे, उनको अलग अलग करने का कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, क्योंकि ऐसे भी आखिरी बच्चे होते हैं, माँ बाप में शिक्षण डाल देते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी सब है उनके बच्चे। यज्ञ के आदि में भी एक शिक्षण पड़ा था क्या, विनाश ज्वाला और रुद्रज्ञानी यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई थी, निमित्त कौन बने, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे माँ बाप की लड़ाई में बच्चे भी घुस पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के पास अजमेर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, उससे पहले नहीं कहेंगे क्या, प्रजापिता ब्रह्मा के पास अजमेर में जाएंगे तभी कहेंगे बाबा। अजमेर मान अज माना बकरा, लोड़ माने लोड़ा, बेड़ बकरियां जहाँ पीछे पीछे चल पड़ते हैं, बेड़ बकरियों की तरह उनकी क्या हालत होती है, एक जहाँ जाएगा पीछे पीछे वहां सभी चले जाएंगे। हाँ, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, तो अजमेर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्यों अजमेर में जाने से पहले बाबा नहीं कहेंगे, कहते तो है लेकिन कभी निश्चय और कभी अनिश्चय होता रहता है, इसलिए कहा कि अजमेर में जब जाएंगे तो निश्चय बुद्धिपूर्वक कहेंगे बाबा, क्योंकि वही प्रजापिता हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं, तो वो हद के प्रजापिता ठहरे, ये है बेहद का। तो बाबा तो परमात्मा का बेहद का बात है, तो आत्माओं के पिता ने और प्रजापिता ने क्या अंतर हुआ, है दोनों बेहद के पिता, वो है आत्मा का पिता और प्रजापिता है मनुष्य शक्ति का पिता। ये भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट से लिखना है, जगदम्बा सरस्वती एक ही है, क्यों जगदम्बा सरस्वती एक ही है, ये कैसे हो सकता है, सारे जगत की अम्बा होगी तो आज में होगी या मध्य में होगी या अंत में होगी, आज में भी होगी मध्य में भी होगी अंत में भी होगी, और सरस्वती सरस्वती नदी तो आदि में नहीं होती है, अंत में नहीं होती है, बीच में ही आती है बीच में ही लोप हो जाती है, तो जगदम्बा सरस्वती एक ही कैसे है, जरूर सरस्वती उम्राज अपना शरीर छोड़ने के बाद जगदम्बा के रूप में पुनर्जन्म लेने वाली में प्रवेश करती है, इसलिए जगदम्बा और सरस्वती एक ही नाम देखो कितने रख दिए, दुर्गा काली आदि आदि, माना प्रवेश करने वाली मूल रूप में देवी तो एक ही है लेकिन वो जैसे रूप में प्रवेश करती है, जैसा आधार लेती है, जैसा पार्श बजाती है, वैसे वैसे उसके नाम पड़ जाते, दुर्गुणों को दूर करने वाले जब चित्त में प्रवेश करती है तो दुर्गा नाम पड़ता है। अम्बा और बाबा की तुम बच्चे हो, ये रचयिता है ना, कौन कौन है रचयिता, जगत पिता, शिव को रचयिता नहीं कहेंगे, शिव तो आत्माओं का बाप है, आत्मा तो अगर हमारा विनाशी है वो रची नहीं जाती है, जगदम्बा प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, अभी कहा जगदम्बा सरस्वती एक ही है, फिर बोला प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, तो बात बेटी एक ही हो गई क्या, वो प्रवेश करने की बात है, और जहाँ बेटी बताया है वो जरूर बाद में पैदा हुई। उनको अम्बा कहते हैं, वास्तव में नाम एक सरस्वती है, बाकी है बच्चे और बच्चियाँ, सब अडॉप्टेड हैं। इतने दूर बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? ये सब है मुखवंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया, मुख से कैसे? तुम मेरी हो, तो रचयिता हो गया। कहते हैं ये मेरी है, मैंने इनसे बच्चे पैदा किए हैं, तो ये सब है एडॉप्शन ईश्वरीय मुख द्वारा। आत्माएं तो है ये है, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आत्मा तो अगर हमारे अविनाशी है, वो कोई रखने की चीज नहीं है, ब्रह्म रहते जाते। बाप कहते हैं तुम आत्मा सदा मेरे बच्चे हो, फिर अभी मैं आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों और बच्चियों को अडॉप्ट करता हूँ, आकर के अडॉप्ट करता हूँ। ऐसे नहीं कहा कि ब्रह्मा शरीर छोड़ देते हैं फिर चला जाता हूँ, फिर एडॉप्शन अपने आप होती रहती है। शरीरधारी बच्चे और बच्ची, उनको एडॉप्ट करते हैं। ये बड़ी सत्य समझने की बातें हैं, इन बातों को समझने से तुम ये लक्ष्मीनारायण बनते हो। कैसे बने ये समझा सकते हो? क्या ऐसे कर्म किए जो विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो, तुमको मालूम है इन्होंने स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? कैसे का जवाब क्या हुआ? भोग बल से ली या योग बल से ली? योग बल से ली। तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकता। योग बल किसे कहेंगे और भोग बल किसे कहेंगे? जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में ही लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, दे अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। जो बहुत कामी होते हैं उनको कहते हैं तुम तो कामी कुत्ता हो, अपनी को छोड़ बाहर वैश्यों के पास जाते रहते। क्या जो अपने घर में है उसकी कदर नहीं करते और बाहर चक्कर काटते रहते? बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ, तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण पवित्र थे, अभी कपित बन गए। जो अभी की बात ऐसे कहेंगे ना, इसमें निंदा की बात नहीं है, ये समझने की बात। भारतवासियों को देहद का बाप कहते हैं मैं यहाँ भारत में आता हूँ, भारत की महिमा तो अपरम अपार है। यहाँ आकर के नरक को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं आकर के। ऐसे नहीं आए और ब्रह्मा के तन में पढ़ा करके वापस चले गए, फिर नई दुनिया अपने आप स्वर्ग बनती रहती है, सबको सुख शांति देती है। तो ऐसे बाप की महिमा अपरम अपार है, पारावार नहीं है। हर धर्म की आत्मा स्वर्ग में जाने के काबिल है, साफ को सुख देते हैं जो लेना चाहिए। माना सब धर्म की आत्मा क्या स्वर्ग में जाती है? नहीं जाती। फिर हर धर्म की आत्मा चुनी हुई, जो पहले भारतवासी थे सती को त्रेता में, वो ही कन्वर्ट होकर के फिर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, दूसरे धर्म की हो जाते हैं। उन्हीं आत्माओं को फिर कन्वर्ट करके پھر سرگ میں لوٹے. اس لیے ہر دھرم میں جنت کی مانیتا ہے, پیراڈائز کی مانیتا ہے. تو ایسے باپ کی کتنی مہم ہے, پاراوار نہیں. یہاں سب ہیں مہان وکاری. جگدمبا اور لکشمی کی مہما کوئی بھی نہیں جانتے ہیں, ان کا بھی کنٹراسٹ تم بتلا سکتے ہو. یہ ہے جگدمبا کی بایوگرافی, یہ لکشمی کی بایوگرافی. وہی جگدمبا پھر لکشمی بنتی ہے. کیسے؟ جگدمبا ایک شریر سے اور لکشمی, لکشمی دوسرے شریر سے, تو ایک کیسے بنتے ہیں؟ برہما تو وشنو کیسے بنتے ہیں؟ برہما ایک شریر سے اور وشنو دوسرے شریر سے, ایک کیسے بنے؟ سوبھاؤ سنسکار مل کر کے ایک ہوئے تب تو ایک بنے نا. وشنو کی چار بھوجائیں دی جاتی ہیں, تو کیا تین بھوجائیں ہیں کیا؟ چار سہیوگی مددگار آتماؤں کا یادگار ہے نا, جو چاروں کے سوبھاؤ سنسکار مل کر کے ایک ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی جگدمبا جو کلیوگ کے انت میں سنگم یوگ میں پرتکش ہوتی ہے جگدمبا کے روپ میں, سارے جگت کی ماں, اور لکشمی سارے جگت کی ماں نہیں ہے. لکشمی ماتا نہیں کہا جاتا کہ سارے جگت کی ہے. کس کی ہے؟ دیوتاؤں. تو دیوتاؤں کی یادیں ہے. تو دونوں کا سوبھاؤ سنسکار پہلے تو الگ الگ ہوتا ہے, اور جب سمپن اسٹیج میں پہنچتے ہیں تو دونوں کا سوبھاؤ ایک ہو جاتا ہے. اس لیے بتایا یہ لکشمی کے بایوگرافی, وہی جگدمبا پھر لکشمی بنتی ہے, مانا مہالکشمی بنتی ہے. پھر لکشمی کو 84 جنموں کے بعد جگدمبا ہوگی. پتر بھی الگ الگ رکھنے چاہیے. جب پتر الگ الگ رکھیں گے تو چرتر بھی ضرور الگ الگ ہو جائے گا. کیا الگ الگ چرتر ہو جائے گا؟ جگدمبا ہے درگنوں کو دور کرنے والی درگا کے روپ میں, سارے جگت کی امبا, جان کلش کو دھارن کرنے والی. کلش کس کو ملتا ہے؟ ماتاؤں کو, اور ماتاؤں میں پرمکھ ماتا جگدمبا. تو وہ جان کلش کو دھارن کرتی ہے, بانٹتی نہیں ہے. اور بانٹتی کون ہے؟ لکشمی. تو دو بھوجائیں دکھائی جاتی ہیں, لیفٹ ہینڈ میں دھارن کرتے ہوئے اور رائٹ ہینڈ میں بانٹنے کی شکتی دکھائی گئی. تو جگدمبا اور سرسوتی دکھاتے ہیں لکشمی کو کلش ملا. کیسے ملا؟ کس نے دیا ہوگا؟ ضرور دیا ہوگا جگدمبا. جگدمبا سے سارے وشنو کی بات کہی, سبھی کو ملتی نمبر بار پرسارتھ ہوتا. اور جگدمبا کو کس سے ملتی؟ جگت پتا. پرنتو لکشمی پھر سنگم یوگ پر کہاں سے آئی؟ جو تو سبھی کو ہوئی. تو یہ سب باتیں باپ بیٹھ سمجھاتے ہیں. چتر بنانے کے اوپر میں جو مقرر ہے ان کو ان باتوں کا وچار ساگر منتھن کرنا چاہیے, تو پھر سمجھانا سہج ہوگا. پرنتو اتنی وشال بدھی کوئی کی بنی نہیں ہے. جب دل پر چڑھے تب ہے, جب بابا کو اچھی ریتی یاد کریں. کہاوت ہے نا, جو چول پر سو دل پر. کیا مطلب؟ جو چولہے پر سو دل پر. چولہے پہ نہیں تو چولہے پہ نہیں, چولہے چولہا جس پہ آگ جلائی جاتی ہے, روٹی پکائی جاتی ہے. ہاں, جو چولہ پر سو دل پر, اور چولہے پہ نہیں تو دل پر نہیں. कौन आदमी चूल्हा है ना, बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे। तो जीवन मुक्ति उनको नहीं मिल सकती, जीवन मुक्ति किनको मिलेगी? जो जड़त्व के मानंद बनने का पुरुषार्थ करेंगे उनको जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रह्म तत्व तो है श्रेष्ठ तत्व, क्रिया तत्व, लेकिन फिर भी जड़। और जीवन मुक्ति पाने के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, विचार सागर मंथन बहुत जरूरी है। वो जड़त्व में चलेगा, जड़ बुद्धि में चलेगा या चैतन्य में चलेगा? जितनी आत्मा में चैतन्यता होगी उतना विचार सागर मंथन व्याप्त चलेगा। अब वो तो है सन्यासी, उनको लेकर वजन कर क्या करेंगे? या तो बेचेंगे या गवर्नमेंट कपोरी बुद्ध। इन सब बातों में कोई फायदा नहीं है, तो जानते हो ये पुरानी दुनिया बदल की गई। इतने दांत बनाए हैं रखने के लिए थोड़े ही है। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौन से दांत बने? बड़े बड़े महारथियों की निंदा रूपी बांस तैयार हुए पड़े, बड़े बड़े महारथियों के आधार पर जो जितने चलने वाले फॉलोअर्स है वो सब बेहतर हो पड़ेंगे जब दम फूटेंगे। ये रखने के लिए थोड़े ही है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये बम काम में आ गए। निंदा रूपी बम हटेंगे और उनमें से बदबू ही बदबू निकल पड़ेगी। वो सब पति तो सबकी जिंदगी में लूप और भरी हुई वो बाहर निकल पड़ती है। तो अंधश्रद्धालु जो काले वर्ष है उनका सत्ता विश्वास वो फट जाता है। ये दुनिया तो गई की गई, अनेक प्रकार की बम और बच्चों को नई नई गुहे बातें रोज समझाती रहती है। तुम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो, बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर सबसा देवी देवता बनेगी। कौन सा उच्च पद है? ज्ञान ज्ञानेश्वर का उच्च पद है, राज राजेश्वर का उच्च पद है। ज्ञान ज्ञानेश्वर का उच्च पद है क्योंकि ज्ञान अभी बाप को है, देवताएं तो बुद्ध हो गए उनमें तो ज्ञान हो गई। तो ब्राह्मण ज्योति है ऊपर, मस्तक में देवताएं कहते हैं बात कर, मस्तक से भी ऊपर ज्योति और ज्योति में गोल गोल शिवलिंग बनाए देते हैं बात लगाई। तो ज्योति में कौन बात करता है? शिव बाबा। जो ऊंची स्टेज वाला होता है चार सागर मंथन की ऊंचाई में चलता है उसमें शिव बाबा का वास होता है। ये नशा है ना, हम सभी को पावन बनाए राजराजेश्वरी बनाए रहे। नशा हो तो बहुत खुशी है। अपने दिल से पूछो हम कितने को आत्मन बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दोनों एक जैसे ब्राह्मणों की रचना रखते, शूद्र को ब्राह्मण बनने की युक्ति बात ही बतलाती। कोई शास्त्र में ये युक्ति नहीं है, ये है भी गीता का युग, महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई, राज्यों में जाते थे कौन महाभारी महाभारत लड़ाई के बीच भगवान रामयोग सिखाते थे। शास्त्रों में फिर घोड़ा गाड़ी पर सिखाई, कि घोड़ों की गाड़ी थी तो घोड़ों अब चार घोड़े थे चार वास्तव में चार मुख्य धर्मों की बीज रूप आत्मा की बात घोड़े गाड़ी में पढ़ाई होती है क्या चार घोड़े होंगे थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर होगा तो घोड़ा इधर चलेगा एक इधर चलेगा राजयोग एक सिखाया होगा क्या मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण की बाकी यहाँ तो ढेर पड़ते हैं बैठे भी देखो कैसे साधारण होंगे कुर्सी में बैठी हुई है क्या वहां तो कैसे पढ़ाई पढ़ते हैं कुछ के ऊपर बैठे कुछ के ऊपर बैठे छोटे बच्चे अलग से पढ़ने अलग और बे बे अपने अलग और बे क्या हुआ अलग माना अल्लाह उसके उनके पास खड़ी परमात्मा के पास और दो माना तुमको अलग और बे पढ़ाई दो है वर्षा मना नारायण बाप कहते हैं मुझे याद करो कि मैं बने बाप की याद से पावन बने कोई भी आसुरी काम नहीं करना है लोग निर्धारण करते हैं देखना हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है मैं मुझको हार कोई गुण नहीं अब मुझको हार समझी है परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझ मेरे गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं अब गुणवान बनाना ये तो बाप का ही काम है बाप होती है अपनी ऊपर रख दी क्या कर बाप की सर्विस की कोई कौन सी अभी बताया निर्गुण आत्म है निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं बाल को प्रकार का क्योंकि जिन बच्चों ने प्रवेश करके बाप सर्विस करते तो बच्चे कौन सी स्टेज में तमो प्रधान या तमो प्रधान समझते भी हम क्या है कैसे खत्म होता तो बच्चे समझते हैं कि हमारी चीज क्या है तो कोई बच्चों ने अहंकार आ गया कि हमने सेवा की वास्तव में सेवा करता कौन है बात करता ही बच्चे में प्रवेश करके सेवा करते तो निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं गुणवान बनाना बाप का काम है बाप की सर्विस की चोटी अपने ऊपर बने रख दी भक्ति मार्ग में निर्गुण आश्रम नाम रखा हुआ है तो ये किसकी चोटी है ये बाप की इज्जत की चोटी अपने ऊपर रख ली है किसने अहंकार तो आज जगत गुरु ये चोटी है ना बाप की चोटी है उन्होंने फिर अपने ऊपर 16108 की टोपी रख दी श्री श्री 16108 कोई फिर टोपी रखते हैं श्री श्री 1008 ब्रह्मा की 1008 भुजाओं की तो बाप कितनी बातें समझाते डायरेक्शन भी देते हैं जगदम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ नहीं तो बहुत गलतफहमी हुई पड़ी है बच्चों को कंट्रास्ट बने तो बच्चे भी समझें और दूसरे भी समझेंगे ब्रह्मा सरस्वती संगम युग के तीसरा कोई लक्ष्मी नारायण है सतयुग के, ये चित्त भी है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण मनुष्य हो, सती भी देवताएं भी हैं मनुष्य, परंतु उन्हों को देवी देवता कहा जाता है, उनको मनुष्य। देवताओं को मनुष्य कहने से जैसे इंसल्ट हो जाते हैं, क्या इंसल्ट हो जाते हैं? दो हाथ दो पांव वाले जो भी हैं, नाक कान कान इंद्रिया भी हैं, फिर इंसल्ट क्यों हो जाती है? मनुष्य कहा जाता है विकारी को, और देवता कहा जाता है निर्विकारी को। तो जो निर्विकारी है उसको अगर मनुष्य कह दे तो क्या हो जाएगा? इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए देवी देवता व भगवान भगवती कहते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। तो मूर्ति का चित्र भी है, सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य, वो कैसे समझावे? उसके लिए फिर गोला भी जरूरी चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सब मंगाते हैं, कलेक्टर को तो कब कोई ने निमंत्रण दिया ही नहीं। तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े, इतनी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इतनी बुद्धि बच्चों में नहीं है, बाप का तो रिकॉर्ड रखना चाहिए ना। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, बच्चा कितना छोटा है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, नहीं घोड़ा कितना बड़ा होता है और पटका छोटा होता है, कौन सा घोड़ा बड़ा? घोड़ा कौन सा बड़ा हुआ और पटका कौन सा छोटा हुआ? घोड़ा कहते हैं मन बुद्धि रूपी आत्मा को, कौन सी मन बुद्धि रूपी आत्मा घोड़ा हुई? पटका कितना छोटा है, पटका मन वस्त्र वो छोटा है, और घोड़ा घोड़ा कितना बड़ा? मन प्रवेश करने वाली आत्मा कितनी महान, और जिस शरीर में प्रवेश करती है वो छोटा। आत्मा भी देखो कितनी छोटी बिंदी, उनका श्रृंगार कितना बड़ा दिखाई दिया। ये अकाल मूर्त का तत्व है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता उठाई है। बाप कैसे मैं आत्माओं को राज्य सिखलाता हूँ, तो फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ। तुमको देहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से देहद का राज्य मिल जाएगा। वैद्य गुण भी दान करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ ली, नाक से क्यों पकड़ती है? टांग से पकड़ लो, नाक कान से माया क्यों पकड़ती है? हैं? कुत्ते की कौन सी इंद्री तीखी होती है? सूंघने की शक्ति उसमें बहुत जास्ती होती है। आजकल अपराधों को पकड़ने के लिए कुत्तों को प्रयोग करते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति जाती होती है। तो माया एकदम नाक से पकड़ती है। क्यों पकड़ती है नाक से? क्योंकि कलयुग में, कलयुग के अंत में काम विकार बहुत बढ़ जाता है, सब व्यभिचारी। तो जो व्यभिचारी होते हैं उनकी बुद्धि ठिकाने नहीं होती, स्वचिंतन कम करेंगे, पर चिंतन जाती करेंगे, तो सूंघा सांगी करते रहेंगे। ये क्या करता है, वो क्या करता है, और एक दो की नहीं करेंगे, सुंगासांगी करने में इतने माहिर होंगे कि ज्ञान सागर तक भी पहुंच जाएंगे। अरे सागर में तो रतन भी भरे हुए हैं ढेर के ढेर, और कचरा भी ढेर का ढेर भरा पड़ा है, उसका कोई आलोड़न कर सकता है? पूरे रतन कोई निकाल ले या चाहे कि हम पूरा कचरा निकाल ले, कोई निकाल सकेगा? नहीं निकाल सकता। सागर में दोनों ही चीजें हैं, तुमको क्या लेना है? कचरा लेना है, ठीक है, कचरा ले लो। वो कचरे का आलोड़न करेंगे, उनकी बुद्धि में कचरा भर जाएगा। रत्नों का आलोड़न करेंगे, उनकी बुद्धि में ज्ञान रत्न भर जाएंगे, जन्म जन्मांतर के साहूकार बनेंगे। तो गीत भी बनाया हुआ है। तो माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं हमसे ऐसे ऐसे भूल हो गई। है क्या भूल हो गई? दूसरों का देखते देखते खुद क्या कर लिया? खुद तो काला मुंह कर लिया, हमने काला मुंह कर लिया। अरे यहाँ तो पवित्रता सिखलाई जाती है, फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो उसमें बात क्या कर सकते हैं? मैंने खुद गिरते हैं और इल्जाम किसके ऊपर लगाते हैं? बाप ने, बाप के ऊपर इल्जाम लगाते। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा था। वेद का बाप भी ऐसे कहते, बल ड्रामा को जानते हैं फिर कहेंगे तो सही ना, तुम औरों को शिक्षा देकर तो खुद गटर में गिरते तो हजार गुना तुम्हारा पाप बढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया, माया ऐसा भूसा मारती है जो एकदम होश ही गुम कर देती है। बात समझाते रहते आंखें बड़ी झूठी बात, कभी कोई विक्रम नहीं करना है, तूफान तो बहुत आ गई क्योंकि युद्ध के मैदान में हो, पता नहीं पड़ता है कि क्या होगा। माया सच थप्पड़ लगा देती, वो फिर बात होता है, शरण होता है, तो कौन तीखा होता है? दोनों वाद तीखा होता है, तीर से ज्यादा तीखा होता है। तो माया ऐसी है जो तुमको बिल्कुल ठीक ही बना देगी, कहते है ना, वाद नहीं तो शरण आ जाता है, शरण नहीं तो वाद आ जाता है। तो माया तुमको एकदम नाक कान से खेद देती, किसी गंदे बनने के लिए बात थोड़ी ऐसे होता है। वहां कर्मेंद्रियां ऐसे कोई काम नहीं करेंगी, वहां तो जेवर ऐसे पहनते हैं जो कब गिरे ही नहीं, मनुष्यों को पता नहीं है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, पहनते हैं ज्ञान गुण रत्नों के जेवर ऐसे पहनते हैं जो कभी नहीं गिरते, और यहाँ स्वचिंतन करेंगे तो जेवर धारण करेंगे, और प्रचिंतन किया तो जेवर जो गिर जाएंगे, मनुष्य को पता नहीं पड़ता है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, आत्म ही समझदार बनती है, आत्मा ही समझती। अब बात समझदार बनाते हैं, बहुत देर अभिमान में है, समझते नहीं है कि हम आत्मा है। क्या समझते हैं? देह अभिमानी, अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, फिर क्या समझते हैं देह अभिमानी के कारण? समझते हैं हम सब कुछ करने वाले हैं। बाबू महात्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा के कानों से सुन रही है। अब बाप कहते हैं कोई भी शास्त्रों की बकबक विकारों की बातें है इन कानों से बस। क्या विकार किसमें होते हैं? मनुष्यों में, जानवरों में भी विकार होते हैं, लेकिन तीखा कौन होता है? जानवर तीखा होता है या मनुष्य? मनुष्य तीखा होता है। तो मनुष्यों में जिनमें विकार है उनका चिंतन करना चाहिए क्या? उनका चिंतन करेंगे तो उनके विकार हमारे अंदर आ जाएंगे। अब शास्त्रों की विकारों की बातें मत सुनो, तो बक बक बंद करो। शास्त्रों कौन सी विकारों की बातें है? कोई विकारों की बातें बहुत सारी बात। राम कृष्ण भगवान माना और उन भगवान को भी क्या समझ लिया? विकारी समझ लिया। तो उन विकारों की बातों को कानों से मत सुनो। माया कहाँ से पकड़ती है? बड़े प्यार से बैठ करके जूझ जूझ के बातें करेंगे। किसी से रिजर्व आती है ऐसी बातें गंदी कब नहीं सुनना चाहिए। जो ऐसी ग्लानी करके बैठ सुनाते हैं शास्त्रकार, चाहे देहदी की दुनिया की हो और चाहे अब की वो ब्राह्मणों की दुनिया की हो, वो क्या करते हैं? वो ऐसी बातें सुनाए सुनाए के अपने को भगवान साबित करते हैं कि वो हम भी भगवान है। ऐसी गंदी बातें कब नहीं सुनना चाहिए। तुम्हारा बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? पहले तो उनकी बुद्धि में ये बात बैठाओ क्या तो बाप सर्वव्यापी है या एकव्यापी है? या तो तुम अपने को भगवान मानो या फिर एक भगवान अगर है कोई उसको बताओ। अगर सर्वव्यापी है तुम भी भगवान हम भी भगवान, अगर सर्वव्यापी नहीं है एक व्यापी है तो सोच लिया करो। ईश्वर सर्वव्यापी है ऐसी गंदी बातें सब नहीं सुनना। तुम्हारा बाप सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप को तुमको विश्व का मालिक बना दिया, मंजिल बहुत बड़ी है। जब मौत नजदीक आवेगा तो तुमको डरेगी। अभी तुमसे कोई डरते नहीं है, भगवान के बच्चे बने हो, अभी कोई को डर नहीं लगता है बात करने। फिर क्या होगा? मौत नजदीक आएगा तो बहुत डरेंगे। कैसे डरेंगे? जैसे धर्मराज के सूतों से भक्ति मार्ग में डरते हैं। मनुष्य को मरने के समय सभी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना भगवान को याद करो। क्या कोई अपने गुरु को याद करेंगे? देहदारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं मां एक को याद करो। मुझे एक को याद करो, एक को याद करने का मतलब क्या हुआ? एक बिंदु को याद करो, बिंदु का तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी एक बिंदु को याद किया। जरूर वो बिंदु साकार तन में आए तब कहा जाए एक को याद करो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप फरमान करते हैं मां मेरे को याद करो। फरमान करने वाला साकार हुआ ही नहीं था, साकार हुआ बन मेरा दारी देख रहे हो। देहदारी को याद नहीं करना। अम्मा बाबा भी देहदारी है ना, याद किसको करना है? कैसी स्टेज वालों को याद करना है? विजय ही इस मेजवाने को याद करना है। इसमें मैं बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ, तुम अभी ज्ञान और योग सीखते। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं, तो ज्ञान सिखाने के लिए मीडिया द्वारा कौन? स्वयं बाप आकर के हमको परिचय देते। बाप का परिचय हमको और कोई दे नहीं सकता। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान सिखलाते, राजयोग भी सिखलाते हैं क्या? ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सिखलाते हैं, ज्ञान ही सुनाते हैं, समझाते हैं, नहीं ज्ञान के साथ साथ राजयोग भी सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा क्या सिखलाया? ज्ञान सिखलाया, राजयोग नहीं सिखलाया। कैसे कहेंगे राजयोग नहीं सिखलाया? ब्रह्मा सरस्वती की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे, वो तो उनकी बनी थी। वही ब्रह्मा सरस्वती को ब्राह्मण भक्तों में प्रवेश करके फिर दोबारा पास पे जाते, तब कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। किन प्रवृत्ति मार्ग में रहकर क्यों उन्होंने राज्य में से बुलाया? तो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का राज नहीं सीख लाए सकते, तो राजयोग भी सीखा। अच्छा, नीचे नीचे से किलो बच्चों पति मात पिता पास दादा का याद करो बच्चों के प्रति, और वो बच्चों के प्रति नहीं, नीचे नीचे बच्चों के प्रति, और कैसे बच्चों के प्रति? सीखी ले गए बच्चों के प्रति, बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, बड़े चित्त से बड़े प्यार से, तो सबसे जाती समय के बिछड़े हुए कौन से बच्चे? शिव परमात्मा के लिए सबसे जाती लंबे समय से बिछड़े हुए बच्चे कौन से? बिरासी जन्म लेने वाले, बयासी जन्म लेने वाले, लेने वाले जो बच्चे हैं वो सबसे जाती लंबे समय से बिछड़े हुए, आदमी भी सबसे पुराने बच्चे हैं जो बिछड़ गए थे। शूटिंग पीरियड में भी सबसे पुराने, तो पांच हजार वर्ष के ड्रामा में भी बाबा सबसे पुराने, ऐसे मीठे मीठे मेरे बच्चों प्रति है ना, बाप के सामने कड़वे न बनते हैं, कैसे बच्चों को याद कर देते मीठे मीठे, और किसी भी बच्चों पर मात पिता अलग अलग क्यों कर दिया? बाप दादा शब्द एक नहीं है, एक शब्द पेंट करके लिखेंगे बाप दादा और मात पिता अलग अलग क्यों? जरूर अलग अलग है, एक मेल है और एक फीमेल है। तो मात पिता और फिर बोला बाप दादा, दो शब्द अलग अलग बोलने की क्या जरूरत? जरूर बाप दादा कोई अलग व्यक्ति हो और मात पिता अलग, मात पिता है तो मेरे फीमेल के रूप में, और जब बाप दादा का है तो दो आत्मा एक ही शरीर, कौन सी दो आत्मा? बाप और दादा कंबाइंड है, बाप दादा है कंबाइन, बाप दादा का याद प्यार और दुख रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमन कौन करता है? बाप पिता ने नमन नहीं किया बच्चों को, लौकिक दुनिया में भी क्या करते हैं? माता पिता बच्चों को सुबह उठ के नमन करते हैं या बच्चे माता पिता को नमन करते हैं? बच्चे सुबह सुबह उठ करके बाप पिता को माथा झुकाकर नमन करते झुकते, या कोई माथा झुकाने की बात नहीं है, या तो सारी सूक्ष्म में बातें हैं। तो नमन करने का मतलब क्या हुआ? बुद्धि से झुकना। जो माता पिता कहें तो ठीक, और हमारी बुद्धि जो फैसला करे वो रंग। तो बालक बनना पड़ता है कहीं, मालिक बनना पड़ता है। तो जहाँ मालिक बनना है वहाँ मालिक बनना है, और जहाँ बालक बनना बुद्धि को झुकाना है अपना माथा झुका करके बात को मान ले। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमन करते हैं, है ना? माता पिता रूहानी हुए या रूहानी हुए, क्योंकि गए आगे मेल फीमेल सरकार। और बाप दादा भी, बाप दादा भी जब एक ही शरीर में दोनों है, अरे जरूर चाहिए। तो बाप दादा या माता पिता बच्चों को नमन नहीं करेंगे, लेकिन रूहानी बाप मन शिव सुप्रीम सोल वो रूहानी बच्चों को नमन करते हैं। जय अभिमानी तांडव को वो भी नमन नहीं करते। ओम शांति।